సగణరఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం శ్రీకృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీరాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ్చ హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధు జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమస్తుతే తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరీ వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరి ప్రియే వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపాసింధుభ్యో ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శివాసాది గౌర భక్త బృంద హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే నమో విష్ణు పాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతనే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే నమస్తే సరస్వతీ దేవే గౌరవాణీ ప్రచారిణి విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతాది హరే కృష్ణ. తో హమ్ ఆజ్ ఏక్ టాపిక్ పే బాత్ కరేంగే దాన్ కే ఊపర్. दान एक ऐसा विषय है कि बहुत सारी भ्रांतियां हैं, क्या दान देना चाहिए, कब दान देना चाहिए, किसको दान देना चाहिए, सारी बातों में बहुत कंफ्यूजन है. तो दान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, तो ऑब्वियसली दान देना चाहिए. दान नहीं देना काफी खराब बात है. दान नहीं देना बेसिकली आसक्ति का प्रतीक है कि हम लोग अपने धन संपत्ति से आसक्त हैं. बेसिकली दान देने से मन में वैराग्य भी उत्पन्न होता है. जब हम दान करते हैं अपने धन का, तो उसे वैराग्य की उत्पत्ति होती है. अच्छा भी लगता है वैराग्य, जब मन में थोड़ा हो तो वैराग्य से मन थोड़ा सा शांत हो जाता है. रामायण के उत्तरखंड में अगस्त मुनि हैं, वो मिले थे भगवान राम से. तो बातचीत चल रही थी, तो उन्होंने दान के विषय में एक घटना बताई भगवान राम को. तो अगस्त मुनि ने कहा कि मैं एक बार ऐसे ही घूम रहा था, तो एक बहुत ही भीहड़ वन मिला. बहुत ही निर्जन वन था, कोई मतलब जानवर भी नहीं था वहां पर, पक्षी भी नहीं थे, पशु भी नहीं था कोई. तो कह रहे मैं उसमें वन में घुस गया, अंदर में जा रहा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही निर्मल मुझे महसूस हो रहा था. तो आगे गया तो एक बहुत ही सुंदर तालाब मिला उनको. तो वो तालाब का पानी एकदम साफ था, क्रिस्टल क्लियर. उसके अंदर कमल के फूल खिले हुए थे, हंस तैर रहे थे उसमें. तो अगस्त मुनि ने बोला है तो बहुत अच्छी जगह है. तो शाम हो गई थी, अगस्त मुनि वहीं पर ठहर गए. एक झोपड़ी सी बनी हुई थी, वहां रुक गए. सुबह उठे, तो सुबह उठ के उन्होंने अपना जो दैनिक दिनचर्या की स्नान इत्यादि किया, तो उन्होंने देखा तालाब के पास में एक शव पड़ा हुआ है, लाश पड़ी हुई है, बहुत ही सुगंधित लाश पड़ी हुई है. तो उन्होंने कहा कहां से आ गई, कल तो मुझे दिखाई नहीं दी थी. तो ये कैसे आ गए इस एकदम से अचानक, मतलब उसके बारे में सोच रहे थे, एकदम ऊपर से एक विमान आया, एरोप्लेन। एरोप्लेन आया तो उसमें अप्सराएं थी और एक व्यक्ति बैठा हुआ था राजा की तरह, और अप्सराएं उसको पंखा झल रही थी, और आसपास गंधर्व थे, उसका गुणगान कर रहे थे गंधर्व। सुनिए ना यार, बड़ा मतलब कमाल का व्यक्ति है, इतना तेज था उसके अंदर। तो वो नीचे उतरा विमान से, तो अगस्त उन्होंने देखा, उसने उस लाश को खाना शुरू कर दिया। वो अचंभित हो गए देख, उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है। तो उसने भरपेट वो शव का भोजन किया और फिर हाथ मुंह धोया उस तालाब में, तो जाने लगे। तो अगस्त मुनि ने कहा भैया बात सुनना जरा, कौन हो, क्या हो रहा है, बता के जाओ, यार दिमाग घूम गया, क्या चल रहा है। तो उसने बताया कि मेरा नाम, मैं जब पृथ्वी पे था तो मेरा नाम महाराज श्वेत था, हाँ, और वैधर्भ उनके पिता का नाम था, छोटे भाई का नाम सूरत था। तो उसके पिता भी बहुत प्रतापवान थे, बहुत धर्म कर्म वाले थे, राज धर्म का पालन करते थे, और मृत्यु के बाद स्वर्ग लोग गए हो। तो जब उसके पिता की मृत्यु हो गई वैधर्भ की, तो महाराज श्वेत को राजा बना दिया, और उसने बहुत चिरकाल तक 1000 साल तक राज किया, और परफेक्ट राज किया, एकदम परफेक्ट, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फिर उसने बोला कि यार अभी मृत्यु का समय निकट आ रहा है, तो फाइन, राजपाट छोड़ दिया, अपने छोटे भाई को सिंहासन पर बिठा दिया। छोटे भाई का नाम क्या था? सूरत। सूरत, छोटे भाई को बिठा दिया, कह रहे मैं यहीं पे आया था, जहां पे आप खड़े हो इसी जगह पे मैं आया, और मैंने तपस्या शुरू कर दी। तो बहुत गहरी तपस्या की, और समय आने पर जब शरीर छोड़ा तो सीधे ब्रह्मलोक पहुंच गए तपस्या के फल से। ब्रह्मलोक पहुंच गए तो बड़े खुश थे, और ब्रह्मलोक में आ गए। ब्रह्मलोक ये जो 14 भुवन है उसमें सबसे हाईएस्ट प्लैनेट है, 14 भुवन है, पृथ्वी बीच में है, सुतल वितल तलातल महातल पाताल नीचे हैं, 7 लोक और 6 लोक ऊपर है, महरलोक जनलोक तपोलोक स्वर्ग, और फिर सबसे ऊपर है ब्रह्मलोक। तपोलोक, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी रहते हैं, तपोलोक पे सनक सनत सनातन सनंदन 4 कुमार और वैसे ही ऋषि रहते हैं। महरलोक पे भी उन्हीं की तरह बहुत ही जो याज्ञिक प्रवृत्ति के लोग हैं वहां पे निवास करते हैं। स्वर्ग लोक के बारे में आप सबको पता ही है ना, इंद्रा और ये सब रहते हैं वहां पर। अब इन्होंने सुन रखा था महाराज श्वेत ने कि अब ब्रह्मलोक में मतलब एवरीथिंग एकदम बढ़िया, हर चीज मिलेगी, भूख प्यास नहीं सताएगी, सब परफेक्ट चलेगा। शाम हो गई ब्रह्मलोक में, तो इनको भूख लगनी शुरू हो गई, महाराज श्वेत को भूख भी लग गई प्यास भी लग गई, तो बड़े परेशान हो गए यार, यहां पे तो भूख प्यास होनी नहीं चाहिए। ब्रह्म लोक में मतलब भूख प्यास कहां से आ गई? तो बड़े दुखी हो रहे थे, तो ब्रह्मा जी सामने आ गए। तो उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी क्या हो रहा है आपके राज में? ये मतलब यहां तो भूख प्यास लगनी नहीं चाहिए, तो मुझे भूख और प्यास क्यों लग रही है? क्या खाऊं कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारे लिए जो भोजन है, तुम्हारा शरीर है वो नीचे रखा हुआ है मृत्यु लोक में, जाओ और जाके खा लो। क्यों, ऐसा क्या हो गया? उन्होंने कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने पूरा जीवन दान नहीं दिया किसी को। उसने राजधर्म अच्छे से निभाया, तपस्या की, हर चीज किया, दान नहीं दिया। तो जब दिया नहीं तुमने तो फिर लोगे कैसे? ब्रह्मा जी ने कहा कि जैसा बोओगे वैसा ही तो काटोगे, तुमने बोया ही नहीं, दान दिया ही नहीं तुमने, फिर कैसे निकाल लोगे? आप समझ रहे हैं बात को? तो कहते हैं कि मैं रोज आता हूं और मैं अपने ही शव को खाता हूं, पेट भर जाता, वापस चला जाता हूं, फिर कल दोबारा आ जाऊंगा और ये शव भी पूरा हो जाएगा। ये जो शव है ऐसा नहीं कि खत्म हो रहा है, कल वापस पूरा का पूरा मिलेगा, फिर आके खाना शुरू कर दूंगा। लेकिन ब्रह्मा जी ने एक बात और कही थी, तो अगस्त मुनि ने कहा, क्या बोला था ब्रह्मा जी ने? और उन्होंने कहा था, जिस दिन तुम अगस्त मुनि के दर्शन कर लोगे छूट जाओगे। तो उन्होंने अपने जेवर उतार के पकड़ाए, प्लीज दान ले लो। तो उन्होंने ब्रह्मा जी अगस्त मुनि को महाराज श्वेत ने दान दिया और वापस चले गए, शरीर गायब हो गया, दुख तकलीफ दूर हो गई। सो बेसिकली दान देना चाहिए, ठीक है ना? ये बात क्लियर है ना आप सबको? लेकिन ऐसा नहीं है कि दान देने से फायदा ही होगा। अगर सोच समझ के दान ने दिया तो नुकसान भी होगा उसका। भगवान राम ने लक्ष्मण जी को ये स्टोरी सुनाई थी महाराज नरेक की, और भगवान कृष्ण लीला में भी ये स्टोरी आती है, भागवत में भी इसका वर्णन है। तो सेम स्टोरी है, दो जगह आ रही है। तो महाराज नरेक थे, बहुत महान दानी थे, वो सुपर दानी थे, उनका काम यही था दान करते रहो। ब्राह्मणों को दान देते रहते थे, कोई भी आ जाए दान दे देंगे वो। तो एक बार एक ब्राह्मण आया, उन्होंने उसको बहुत सारी गायें दान दे दी। अब वो गायें लेके जा रहा था, एक गाय वापस चलते हुए आ गई, किसी ने ध्यान नहीं दिया। एक दूसरा ब्राह्मण आया, उन्होंने वो ढेर सारी गायें दूसरे ब्राह्मण को दान दे दी, उसमें वो गायें भी थी। अब वो जो पहले वाला ब्राह्मण था, उसने घर जाके देखा तो उसने कहा, एक गायें कम है, क्या चक्कर है? तो पता लगाया, पता नहीं कैसे पता लगाया होगा, भगवान जाने। तो पता लगाया तो पता चला कि जी वो एक गाय जो उनकी थी वो दूसरे ब्राह्मण के पास चली गई। तो ब्राह्मण ने कहा, आपने मुझे दान दे के वापिस कैसे ले लिया? जो मुझे दान दे दिया वो तो मेरी संपत्ति है, आप किसी और को कैसे दान दे सकते हो? अब महाराज नरेक टेंशन में आ गए, तो वो दूसरे ब्राह्मण के पास गए। कोई गलती है इसमें महाराज नरेक की? मतलब कुछ पता ही नहीं है। तो वो दूसरे ब्राह्मण के पास गए, प्लीज एक गाय दे दो उनकी है। अरे ऐसे कैसे दे दूं? अड़ गए वो भी। हाँ, तो महाराज ने कहा, दोनों एक एक लाख गायें ले लो इसके बदले में, मेरा पीछा छोड़ो। क्या भैया, कुछ नहीं होगा, यही गाय चाहिए हमें। अरे गए यूनो, हमारे जैसा ब्राह्मण होता हम कहते यार चलो ठीक है एक दो गाय कम भी दे देना चलेगा, 1 लाख गाय दो यार पहले फिर बात करेंगे। लेकिन वो अड़ गए बेसिकली, उन्होंने कहा नहीं चलेगा बात। तो दोनों नाराज होकर चले गए। तो जब मृत्यु हुई महाराज नरक की, तो कहां पे पहुंचे? मरने के बाद कहां जाते हैं? यमराज जी के पास। यमराज जी के पास जाएंगे ना। आप सब बहुत बार जा चुके हो, भूल गए हो आप सब। तो यमराज जी के पास पहुंचे तो यमराज जी ने उनका अकाउंट खोला, बोला दिखाओ क्या लिखा है भैया। उन्होंने कहा यार तुम्हारे तो पुण्यों का खाता ही मतलब खत्म ही नहीं हो रहा, एक पाप है। और महाराज नरक ने कहा क्या बताऊं भगवान कैसे हो गया वो पाप। तो यमराज जी ने कहा मुझे नहीं पता तुम्हारे पुण्य खत्म कैसे होंगे, इतने पुण्य है तुम्हारे, पहले पाप भोगोगे कि पुण्य भोगोगे? तो महाराज नरक ने कहा कि भैया पहले पाप निपटा दूं फिर पुण्य के बारे में सोचूंगा। तो प्रभुपाद यहां पे बोल रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं कि महाराज नरक ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं थे। जब एक बंदे ने कह दिया कि भैया पता ही नहीं है कब खत्म होंगे, तो बुद्धिमानी किसमें है? भैया पुण्य भोग लो। पता ही नहीं है कब खत्म होंगे। तो जैसे उन्होंने बोला महाराज नरक ने, तुरंत यमराज ने उसको छिपकली बना दिया, लिजार्ड, और छिपकली बना दी और नीचे गिर गए। तो फिर भगवान कृष्ण ने उनका उद्धार किया बेसिकली। तो जब भगवान कृष्ण ने उद्धार किया, भगवान कृष्ण का चरण स्पर्श मिला जब, तो एकदम गंधर्व बन गए। तो भगवान कृष्ण ने पूछा कौन हो तुम? तो पता है महाराज नरक ने क्या जवाब दिया? कौन बताएगा? ऐसे वो प्रेम चोपड़ा था ना, बोलता था नाम तो सुना होगा प्रेम नाम। तो महाराज नरक ने बोला कि अगर आपने दान देने वालों के बारे में सुना होगा तो मेरा नाम भी आया होगा उसमें जरूर। इतना मतलब उनको गर्व था। इससे पता चलता है कि सकाम कर्मी थे बेसिकली। इससे क्लियर हो जाता है कि सकाम फल की इच्छा से दान दे रहे थे वो। तो भगवान कृष्ण का ओके फाइन हो गया ना तुम्हारा काम, अब तुम आजाद हो गए, चाहो भाग जाओ यहां से। तो उन्होंने प्रणाम किया, बहुत स्तुति की भगवान की। प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं भागवतम में कि उनके हृदय में, महाराज नरक के हृदय में भगवान का दर्शन करने की इच्छा थी। हालांकि वो शुद्ध भक्त नहीं थे लेकिन इच्छा थी, भगवान ने पूरी कर दी इच्छा। तो दान नहीं देंगे तो प्रॉब्लम है, और अगर दान देंगे तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या करना चाहिए? तो भगवान कृष्ण भगवत गीता में एक्सप्लेन कर रहे हैं 17वें अध्याय में। भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि दान 3 तरह के होते हैं। दान सतोगुण में होता है, दान रजोगुण में होता है, और दान तमोगुण में होता है। तो उन्होंने बताया कि जो सतोगुण का दान क्या है कि फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए और निर अभिमानी होकर दान देना चाहिए, और समय पात्र स्थिति का विचार करके दान देना चाहिए। जो ऐसे कर रहा है वो सतोगुण में दान है। रजोगुण में दान क्या है? अनमने भाव से दिया, फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को वो, प्रभु आप कुछ पैसे क्यों नहीं देते हैं, आपको दान देना चाहिए, प्रोग्राम कैसे चलेगा, तो आप बोलो ओके ठीक है, अरे 100 रुपए निकाले दे दिए तो वो रजोगुण का दान है बेसिकली या फल की इच्छा से, मान सम्मान की इच्छा से अगर दान दिया तो रजोगुण में दान है। और तमोगुण में दान क्या है कि कोई समय का विचार नहीं है, पात्र को पात्र का विचार नहीं किया, मन मर्जी से जो आया उठा के दान दे दिया। जैसे हम सड़क पे जाते हैं तो रेड लाइट पे जैसे खड़े हो तो बहुत सारे भिखारी आ जाते हैं, आजकल कम आ रहे हैं, या तो गवर्नमेंट ने मतलब पकड़ पकड़ तो नहीं लिया। अच्छा, मतलब पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा भिखारी दिखते नहीं है, पहले बहुत दिखते थे भिखारी। तो एक बार इनफैक्ट काफी टाइम की बात है, मैं नेहरू प्लेस से हम निकल रहे थे, हम गुड़गांव जा रहे थे, तो हम कार में था मैं, तो मेरे साथ में एक मेरा इजरायली फ्रेंड था, इजराइल से आया हुआ था वो काम के सिलसिले में। तो हम लोग नेहरू प्लेस के रेड लाइट पे खड़े थे, तो एक औरत आई बच्चा लेके, तो बच्चे पे कंबल डाला हुआ था, चादर से डाली हुई थी, तो उसने दरवाजा खटखटाया शीशा तो वो जहां पे मेरा फ्रेंड बैठा हुआ था वही वाली खिड़की का दरवाजा खटखटाया उसने। उसने कहा ये क्या हो रहा है, तो उसने कहा कुछ दो, तो उसने मुझे बोला ये क्या हो रहा है यार, तो मैंने कहा तो उस तरफ मत देखियो तो देखेगा तो फंस जाएगा तो उस औरत ने अपने बच्चे के जो शरीर पे कपड़ा डाला हुआ था उसने कपड़ा हटाया, पूरे शरीर पे जख्म ही जख्म थे उस बच्चे के, छोटा सा बच्चा था, मेरे ख्याल कुछ महीनों का होगा, 8-10 महीने साल टाइप ऐसे ही होगा, पूरे शरीर पे उसके फोड़े थे। तो उसने दिखाए उसके बच्चे के फोड़े, कुछ दे दो, वो पागल हो गया वो उसने कहा यार क्या करूं, दिमाग खराब हो गया मेरा, वो तो भगवान की दया से ग्रीन लाइट हो गई, तो हम फटाफट निकल गए वहां से। पूरा रास्ता मुझे नेहरू प्लेस से घंटा लगा पहुंचने में गुड़गांव, कह रहा यार रात को नींद कैसे आएगी, क्या करूं, मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने पहली बार ऐसा दृश्य देखा है इतने लाइव करीब से, एकदम से मुझे कुछ देना चाहिए था, मैंने कहा दे देता भाई तो क्यों नहीं दिया अगर देना था, मैंने कहा जैसे तो शीशा खोलता मेरी घड़ी वड़ी सब छीन लेते वो सो अगर पात्र का विचार नहीं किया, दान दिया, तो उसका फायदा होने की जगह नुकसान होता है उसका। जैसे हमने किसी भिखारी को 2-4-5 रुपए दे दिए, तो उससे क्या होगा, वो अगर उसने उस पैसे की शराब बीड़ी सिगरेट पी ली तो हमें उसका फल भुगतना पड़ेगा, हमें हम भागीदार हो जाए, हमने सहयोग कर दिया ना उसको शराब पीने में, मांस खाने में, हमने सहयोग कर दिया। तो बहुत सारे लोग नाराज हो जाते हैं इस बात से और बोलते हैं तो क्या दान नहीं देना चाहिए भिखारी को, हेल्प नहीं करनी चाहिए। अगर आप हेल्प करना चाहते हो अपने साथ प्रसाद लेके चलो, कोई भी भिखारी आए तो उसको प्रसाद दो, उसको तो कम से कम प्रसाद लेगा, खाएगा अगर प्रसाद तो कुछ अज्ञात सुकृति मिलेगी, जीवन ये जन्म नहीं अगला जन्म नहीं कोई जन्म में कृष्ण भक्ति में जुड़ने का अवसर मिल जाएगा उसको, वो अच्छा तरीका है अगर हम वाकई में कल्याण करना चाहें। फल की इच्छा से दान देने का हमने नतीजा देख ही लिया कि कोई भी मिस्टेक हो जाएगी तो उसका भयंकर परिणाम भुगतना पड़ेगा, पुण्य का परिणाम भी मिलेगा। जो हमने दान दिया उसका भी फल मिलेगा, लेकिन अगर कुछ गलती हो गई तो उसका हमें खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा। हमें ऐसा नहीं है कि पाप से पुण्य कट जाएंगे, पाप से पुण्य, पुण्य से पाप नहीं कटते। पुण्य का खाता अलग चलता है, पाप का खाता अलग चलता है। पाप कटते हैं, प्रायश्चित करना पड़ता है, प्रायश्चित से कई पाप होते हैं वो कट जाते हैं। लेकिन पुण्य, हम सोचें कि हम पुण्य करके पाप को काट लेंगे, ऐसा नहीं होता। पुण्य का फल अलग से आपको सुख के रूप में भोगना पड़ेगा आपको। जो पुण्य का फल हम सुख के रूप में भोगेंगे वो भी एक्चुअली में नुकसान देती है चीज। इनफैक्ट भागवतम के छठे स्कंद में वर्णन आता है, जब यमदूत यमराज जी के पास गए थे, अजामिल को लेने गए थे, नहीं लेके आ पाए, विष्णु दूतों ने भगा दिया था। तो यमदूतों ने पूछा यमराज जी से, पहले तो यमदूतों ने पूछा उनसे, विष्णु दूतों से, भैया हमें क्यों रोक रहे हो तुम, क्या पॉइंट है हमें रोकने का। तो विष्णु दूतों ने बोला, हम तेरे से बात नहीं करते, हम तुम्हारे मुंह नहीं लगते, भाग जाओ यहां से, जिसने तुम्हें भेजा उससे जाके पूछना। जवाब ही नहीं दिया उनको। तो डरते डरते यमदूत गए यमराज जी के पास, उनको पूछा, क्या प्लीज बताओ, मतलब क्या हो रहा है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। तो यमराज जी ने बोला कि देखो, एक्चुअली में जो पाप तो पाप है ही, पुण्य भी एक्चुअली में पाप ही है। यमदूतों ने बोला, क्या कह रहे हो, पुण्य कैसे पाप हो सकते हैं। तो यमराज जी ने बोला, नीचे देखो क्या हो रहा है, जितने अमीर व्यक्ति हैं वो अमीर क्यों है, बोल रहे पुण्य की वजह से। तो बोल रहे क्या कर रहे हैं, बोले पाप कर रहे हैं। तो बोले पुण्य पाप में बदल गए ना, पुण्य करेंगे हमें बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी, सुविधाएं मिलेंगी। यमराज जी कह रहे, दिमाग खराब हो जाता है सुविधाएं मिलने से, दिमाग खराब हो जाएगा, सुविधाएं बहुत हैं, तो व्यक्ति क्या करेगा, उन सुविधाओं का मिसयूज करेगा, गलत यूज करेगा। और क्योंकि उसके पास बहुत सारी सुविधाएं हैं तो बहुत सारा दुरुपयोग करेगा, जब बहुत सारा दुरुपयोग करेगा तो क्या होगा, बहुत सारा दुख झेलना पड़ेगा। तो यमराज ने कहा, आप समझ गए। यमदूतों ने कहा, ये तो कमाल की बात हो गई कि पाप तो पाप है, पुण्य भी एक्चुअली में पाप है। तो क्या करें, ना पाप करें ना पुण्य करें, तो बड़ा चक्कर में फंस गई सारी बात, नहीं, अजीब सी सिचुएशन क्रिएट हो गई, करना क्या चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि आप दान दें निष्काम भाव से, आप दान दें भक्तों को। अगर हम भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए दान देंगे तो हमें ना तो उसका पाप लगेगा कुछ, ना ही हमें पुण्य मिलेगा। क्योंकि भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कोई भी काम किया जाएगा, निष्काम भाव जरूरी है। आप ये नहीं सोच सकते कि चलो मैंने आज प्रोग्राम के लिए 500 रुपए दान दिए हैं तो कभी इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में उसका फल मिलेगा। मिलेगा, अगर आप ये सोच के दोगे तो मिलेगा फल। लेकिन अगर आप निष्काम भाव से दोगे तो ना आपको पाप लगेगा ना पुण्य लगेगा। और वो जो दान है जो आप भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए दोगे, वो आपको इस कर्म बंधन से बाहर निकलने में हेल्प भी करेगा। अभी हम कल ही एक्चुअली में चर्चा कर रहे थे, हमारे एक भक्त हैं वो बता रहे थे कि यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। कि अगर आप भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं करोगे तो कर्म बंधन होगा, अगर आप भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करोगे तो कर्म बंधन नहीं होगा। ब्रह्मा जी भी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं भागवत ब्रह्म संहिता में। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा। ब्रह्मा जी ने एक्चुअली बोला कि इंद्र से लेकर इंद्र गोपम नाम का कीड़ा सब कर्म बंधन में फंसे हुए हैं। यस्तो इंद्र गोपम अथवेन्द्रम अहो स्व कर्मा बंधानुरूप फल भाजनम आतनोति। कि इंद्र से लेकर एक कीड़े तक सब बराबर है। अरे क्यों बराबर है, वो कीड़ा वो इंद्र क्या फर्क नहीं दिख रहा? बड़े बड़े देवी देवता सल्यूट करते हैं इंद्र को, वो कीड़ा है नाली में गिरा हुआ है। आप कह रहे हो बराबर है, तो ब्रह्मा जी कहते हैं हाँ बराबर है। क्यों बराबर है? तो बोल रहे हैं कि इंद्र भी कर्म फल भोग रहे हैं और कीड़ा भी कर्म फल भोग रहे हैं। जब दोनों ही कर्म फल भोग रहे हैं, दोनों के गले में कर्म बंधन की रस्सी बंधी हुई है। फर्क इतना है, एक के गले में छोटी रस्सी बंधी हुई है, एक के गले में लंबी रस्सी बंधी हुई है, लेकिन बंधे दोनों हुए। एक लोहे के जंजीर से बना हुआ है, एक सोने की जंजीर से बंधा हुआ है, लेकिन बंधे दोनों हुए। तो कैसे बाहर निकलेंगे? तो ब्रह्मा जी ने बोला कर्माणि निर्दहति, ये कर्म कट जाएंगे खत्म हो जाएंगे। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा, भक्ति करेंगे कृष्ण स्मरण करेंगे, कृष्ण नाम कृष्ण धाम कृष्ण कथा, अगर हम कृष्ण भक्त अगर हम इनकी सेवा में संलग्न होंगे तो हम लोग इसी को भक्ति कहते हैं, और भक्ति के माध्यम से हम लोग इस कर्म बंधन से बाहर निकल जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि दो चीजें हो रही हैं। हमने भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य किया, दान दिया हमने अगर, तो एक काम तो यह हुआ कि ना पुण्य हुआ ना पाप हुआ, ना पुण्य हुआ ना पाप हुआ। लेकिन एक काम और हुआ कि जो हमारे पुण्य और पापों का इतना बड़ा मेरु पर्वत खड़ा हुआ है जो, वो भी कटना शुरू हो गया। नया उसमें एडिशन नहीं हुआ, उसमें जमा नहीं हुआ नया, वो एक फायदा हुआ। जो पुराना ढेर इतना लंबा चौड़ा खड़ा हुआ था वो भी कटना शुरू हो गया। इसको बोलते हैं कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा। तो क्वेश्चन जो हमने शुरू में उठाया था कि दान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ऑफ कोर्स दान देना चाहिए। और भगवान कृष्ण, और ऐसा नहीं कि अगर आप भक्त बन गए हो आप जप कर रहे हो तो दान नहीं देना चाहिए, आपको भी दान देना चाहिए। और भगवान कृष्ण भगवत गीता के 18वें अध्याय के 5वें श्लोक में कृष्णा बोल रहे हैं यज्ञ दान तपह कर्मा न त्याज्यम कार्यम एव तत् यज्ञो दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणा। मनीषिणा मतलब महात्मा जो है, जो महान आत्माएं हैं, जो समझदार लोग हैं। पावनानि वो भी शुद्धिकरण होता है उनका, पावनानि उनका भी शुद्धिकरण होता है। यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निस्संदेह यज्ञ, दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। सो क्या भक्तों को दान देना चाहिए? हाँ, भक्तों को दान देना चाहिए, लेकिन भक्तों को दान देना चाहिए, आप सबको एक्चुअली में दान देना चाहिए, भक्तों को, जो भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की महिमा का यशोगान करने में संलग्न है, उनको अवश्य दान देना चाहिए। और वो दान देने से आपको, अगर आप किसी कामना के साथ दान देंगे, वो कामना भी भगवान पूरी करेंगे। अगर आप निष्काम भाव से दान देंगे, जो कि सर्वोत्तम है, सतोगुण में रहकर अगर आप दान देंगे भक्तों को, तो उसका ना तो आपको कोई पाप मिलेगा, ना पुण्य मिलेगा। और अगर आप निरंतर इस कार्य में लगे रहेंगे, तो एक ऐसा भी पल आएगा, ऐसा क्षण आएगा, जब आपके नए कर्म बनने बंद हो जाएंगे, पुराने खत्म हो जाएंगे। तब जब आप उस परिस्थिति में जब शरीर छोड़ोगे, तो क्योंकि कर्म नहीं है, तो उनको भोगने के लिए दोबारा शरीर लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आप सीधा शरीर छोड़ोगे, पुष्प विमान आएगा आपको लेने के लिए, और सीधा भगवत धाम पहुंच जाओगे। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। आपका कोई अगर इस विषय में प्रश्न है, तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। ओके, हाँ, हाँ, तो अपाहिजों को, गरीब लोगों को आप दान दें, लेकिन दान देने का एक तरीका है। अगर आप उनको कुछ मदद करना चाहते हैं, तो आप उनके लिए भोजन बनाएं, भगवान को भोग लगाएं, और फिर वो प्रसाद उनको जाके वितरित करें। अगर वो उस प्रसाद को ग्रहण करेंगे, अगर वो, तो उनको, जैसे हमने बात किया, अज्ञात सुकृति मिलेगी भगवान का प्रसाद ग्रहण करने से। जिस मुश्किल परिस्थितियों में वो फंसे हुए हैं, उससे उनको निजात मिलेगी, उनका मन शांत होगा, पुण्य उनको प्राप्त होंगे, उस कष्टकारी जीवन से छुटकारा मिलने की संभावना बन जाएगी उनकी। लेकिन अगर भगवान को अर्पित किए बिना उनको कुछ वस्तु दी, तो कृष्ण भगवद गीता में कह रहे हैं कि अगर मुझे भोग लगाए बिना, मुझे अर्पित किए बिना आपने किसी भी चीज का भोग किया, तो वो पाप है। तो हम गए थे मदद करने के लिए, हमने और उस पे पापों का बोझा लाद दिया, ये कैसा सहायता है? सहायता करने के लिए पहले पता होना चाहिए सहायता करनी कैसे है। ठीक है, हम इस जो आज का विषय था, यही उसका बताना था, मकसद यही था उसका, कि हम सहायता करना चाहते हैं, सहायता करनी चाहिए, लेकिन सहायता करने की एक पद्धति है, उस पद्धति का पालन करो, करो सहायता, कोई मना नहीं कर रहा। ठीक है, आप क्या कह रहे थे? वो एकदम से नहीं होगा, जब आप इस प्रोसेस में जुड़ेंगे, जब आप दान करना शुरू करेगा, कोई भी व्यक्ति दान देना शुरू करेगा तो पहले कर्ता भाव रहेगा ही, पहले फल की इच्छा रहेगी, लेकिन जैसे जैसे आप करते रहेंगे लगातार, धीरे धीरे आपके मन में वैराग्य का भाव पुष्ट होता जाएगा और जो कर्ता भाव धीरे धीरे घटता जाएगा। तो इसको करते रहेंगे, साथ में हम भक्ति में जुड़े रहेंगे, हम भगवान का जप कर रहे हैं, भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, उससे भी तो हमारी बुद्धि शुद्ध हो रही है। और जैसे जैसे हम अपना जो अर्जित धन है जो हम दान करेंगे, धीरे धीरे हमारा उस धन के प्रति वैराग्य उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। तो धीरे धीरे होगा, घटना शुरू हो जाएगा, लेकिन हम शुरू करेंगे तो घटेगा ना, अगर हम करेंगे ही नहीं तो फिर घटेगा कैसे। पुण्य कर्मों से भक्ति के लिए सुकृति नहीं मिलती, जो सुकृति है भक्ति करने की वो भक्तों की कृपा से ही मिलती है। इसीलिए तो श्रील प्रभुपाद ने पूरे संसार में जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन किया, गली गली में जाकर कीर्तन निकलवाने शुरू किए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन शुरू की, ये सब वो सुकृति बांटने के तरीके हैं कि श्रील प्रभुपाद के जो सिपाही हैं घर घर जा रहे हैं, कोई नहीं चाह रहा तो भी उसके पास जाके उसको किसी ना किसी तरह से पुस्तक दे रहे हैं, प्रसाद दे रहे हैं, हरिनाम उसके कानों में जा रहा है, उससे भक्ति में जुड़ेगा वो। कोई सोचे कि मैं करोड़ों रुपए दान देके धर्मशालाएं स्कूल बनवा दूं, उससे भक्ति मिलेगी, नहीं मिलेगी। भक्ति का जो कारण है वो भक्ति है, और भक्ति का परिणाम क्या है, भक्ति है, कुछ और नहीं है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट चलती है। राहुल क्या कह रहा था, जो सुबह सुबह, हाँ दान, ये नहीं का क्वेश्चन है, आप कोई भी आपके घर में दान मांगने आ रहा है आप उसको दें, लेकिन भगवान को भोग लगी हुई वस्तु उसको दान में दें तो अच्छा है। वो पैसा इसलिए मांगते हैं क्योंकि वो पैसा लेके जाके गांजा बीड़ी पिएंगे, वो इसलिए मांगते हैं वो, ठीक है। और अगर आप उनको गांजा बीड़ी पीने में, शराब पीने में उनकी मदद करोगे तो उसका फल आपको भी भोगना पड़ेगा, ठीक। नहीं, आप अपनी तरफ से उनको ऑफर करो प्रसाद, वो नहीं लेके जाए तो अलग बात है, वो नहीं लेके जाए तो आप क्या कर सकते हो, लेकिन आप ऑफर करो। अगर आपको पैसे ही दान में देने हैं तो चाहे आपने 2 रुपए देने हो, चाहे 1,000 रुपए देने हो, आप जो भगवान के नाम के प्रचार में लगे हुए हैं उनको दो, आप उससे आपको ज्यादा लाभ होगा। भगवान को बिना अर्पित किए नहीं करना चाहिए, भगवान को अर्पित किए बिना अगर आप करेंगे, चाहे आपने कच्चे आटे दाल का भी आपने किसी को दिया तो, और उसने भोग लगाकर नहीं खाया तो भी आपको फल मिलेगा। हाँ, वो आटा आप दोगे वैसे भी बेच देगा, फिर जाके बीड़ी सिगरेट गांजा ले लेगा उसके, ठीक है ना। सो प्लीज, आप दान देना चाहिए, दान देना इस बात की निशानी है कि आपका हृदय कोमल है, आप लोगों की मदद करना चाहते हो। लेकिन दान देने के लिए, जैसे भगवान भगवद गीता में एक्सप्लेन कर रहे हैं, पात्र को पात्र, स्थिति इत्यादि का विचार करके दान देना चाहिए। और बेस्ट तरीका, जैसे श्रील प्रभुपाद ने बताया कि जो लोग भगवान के नाम और शिक्षा के प्रचार में लगे हैं उनको दान देना सर्वोत्तम है, ठीक है। हरे कृष्ण श्रील प्रभुपाद की जय।